हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 105। अंबिका अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तब तक वेदांश की माँ दोबारा से उसके सामने आकर बैठ गई। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर चली जाओ उसकी ज़िंदगी से। वो अभी बेहोश है, डॉक्टर ने भी कहा है उसे सुबह से पहले होश नहीं आएगा, तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास। मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी, बॉडीगार्ड की नज़रों से बचकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और तुम यहाँ से चली जाना, वापस अपने घर, यहाँ इस शहर से दूर कहीं भी, क्योंकि तुम वेदांश के साथ रहना नहीं चाहती ना। ये सब सिर्फ वेदांश की ज़ोर ज़बरदस्ती है और कुछ नहीं ना। वेदांश की माँ की ये बात सुनकर अंबिका की आंखें खुली रह गईं। उसे उनकी बातों पर यकीन भी नहीं हुआ कि वो इतनी आसानी से उसे यहाँ से चले जाने को बोल रही थीं, जबकि अंबिका ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अंबिका ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए कहा, ये क्या बोल रही हैं आप? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप उन्हें सबको हटा नहीं पाएंगी। और वेदांश, वो ठीक नहीं है, अभी होश में भी नहीं है, तो ऐसे कैसे मैं? वेदांश की माँ ने बहुत ही सीरियस होकर कहा, हाँ तो इसीलिए तो बोल रही हूँ, अभी यही एक और आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुम सच में कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो फिर चली जाओ यहाँ से, बाहर उसकी ज़िंदगी से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों उसे और मुझे एक उम्मीद दे रही हो, एक झूठी उम्मीद? और मैंने कहा है ना, मैं मदद करूँगी तुम्हारी। उन सब लोगों की चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल सकती हूँ। तुम बस नीचे आ जाना रात को ठीक 12 बजे, उस तरफ कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता और मैं तुम्हारे लिए कैब भी बुला दूंगी, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। अंबिका ने तेजी से अपना सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर मैं किसी तरह यहाँ से निकलकर घर चली भी गई तो वेदांश मुझे वापस ले आएगा, और फिर वो गुस्से में होगा तो वो मेरे परिवार को भी नुकसान पहुँचा सकता है। प्लीज, मैं उनकी जान पर खतरा नहीं आने दे सकती, इसीलिए मुझे यहाँ पर ही रुकना होगा। वेदांश की माँ ने उसे ताना मारते हुए कहा, ये सब बहाने हैं अंबिका, सच में एक बार खुद से पूछो, क्या तुम खुद यहाँ से जाना चाहती हो? ठीक है, अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दूसरे शहर नहीं, दूसरे देश भेजने का इंतजाम कर दूँ, क्या तब तुम यहाँ से जाओगी? हमेशा हमेशा के लिए वेदांश को छोड़कर कभी भी उसकी लाइफ में वापस नहीं आ पाओगी, और इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, वेदांश को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, और अगर पता चल भी गया तो भी मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। बोलो, अब जाओगी ना अपने परिवार के पास? तुम्हें वहीं जाना है ना, तुम नहीं रहना चाहती ना वेदांश के साथ? तो ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल फोन, मैं दूसरे नंबर से तुम्हें मैसेज करूंगी 12 बजे, और तुम बस ओके रिप्लाई करके नीचे आ जाना, ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। अंबिका ने उनके हाथ से मोबाइल फोन अपने हाथ में ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका क्या करेगी। उसने एक नज़र मोबाइल फोन की ओर देखा और फिर सामने खड़ी वेदांश की माँ की ओर, जो सवालिया नज़रों से अभी भी उसकी तरफ ही देख रही थीं। उनकी आंखों में अंबिका को ऐसे सवाल नज़र आ रहे थे जिनका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। अंबिका ने खुद से बात करते हुए अपने मन में कहा, क्या बोल रही हैं आंटी, क्या सच में ये मेरी मदद करना चाहती है मुझे यहाँ से दूर भेजकर? लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रही? मुझे तो पहला मौका मिलते ही यहाँ से चली जाना चाहिए था, वेदांश के बेहोश होते ही, लेकिन मेरे मन में एक बार भी ख्याल क्यों नहीं आया वेदांश को ऐसे छोड़कर जाने का? उल्टा मुझे उसकी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है? ऐसे आदमी की फ़िक्र जिसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर रखी हुई थी और यहाँ तक मेरे घर वालों को मारने की भी धमकी दी थी, 4 दीवारी में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन अब मैं खुद इस 4 दीवारी से बाहर क्यों नहीं जाना चाह रही हूँ? अंबिका नज़र घुमाकर उस कमरे को काफ़ी ध्यान से देखने लगी जहाँ पर वो पिछले 2 महीने से रह रही थी, और एक अजीब सा अपनापन उसे वहाँ पर महसूस होने लगा था, और इसके अलावा उसकी नज़रें बार बार वेदांश पर जाकर ही ठहर रही थीं। वेदांश की माँ भी चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ अंबिका की तरफ देख रही थीं। उन्होंने अपने मन में कहा, मुझसे झूठ बोल रही हो या फिर खुद से कोई बात नहीं समझाने के लिए? अगर मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हें वेदांश से दूर भी करना पड़ा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि दूर रहकर ही एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है, और अगर ये ज़रूरी हुआ तो मैं ये करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से जाने के लिए राज़ी होगी। वेदांश की माँ को कहीं ना कहीं विश्वास था कि अंबिका अभी वेदांश को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और वो इस विश्वास के साथ अंबिका की तरफ देख रही थीं। अंबिका ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, तुम तैयार रहना, हो सके तो थोड़े कम्फर्टेबल और डार्क कलर के कपड़े पहन लेना जिससे कि तुम किसी की नज़र में न आओ, और बाकी इंतज़ाम मैं कर दूंगी, तुम्हारी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ जाएगा। और वेदांश की माँ अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अंबिका ने उनका मोबाइल फ़ोन उनके तरफ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं जाना, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, और प्लीज़ मेरे भाई बहन को इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए, वो लोग यहाँ से जितना दूर रहें उतना उनके लिए अच्छा है, मैं हमेशा यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ और जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी, लेकिन मैं यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाने वाली। अंबिका ने एकदम मजबूती से ये बात कही तो सामने खड़ी वेदांश के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उन्होंने अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में वापस लिया और धीरे से अंबिका के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नहीं जा सकती तुम, कहीं भी नहीं जा सकती, एक बंधन जो बंध गया है तुम दोनों के बीच, और ये कोई छोटा मोटा बंधन नहीं, शादी का पवित्र बंधन होता है जो इतनी आसानी से नहीं टूटता, इसीलिए तुम वेदांश को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम माँ चाहिए उसकी, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रही है, फिक्र उसके लिए, तुम इसे मानो या ना मानो लेकिन तुम उसकी पत्नी बन चुकी हो, बस अब उसे अपना पति भी बना लो। वेदांश की माँ की ऐसी उलझी हुई गोल गोल बातें सुनकर अंबिका को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बोला। वेदांश की माँ धीरे से दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर चली गई, और उनके जाने के बाद अंबिका धीरे से आगे आई और कुछ देर तक बिस्तर के साइड में बैठकर बेहोश वेदांश की तरफ ही देखती रही। वेदांश को बिल्कुल भी होश नहीं था, इस वक्त अंबिका जहाँ भी चाहती जा सकती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल ही मान रहा था वेदांश को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी जाने का। वेदांश के चेहरे की तरफ देखते हुए अंबिका के मन में ये सारे सवाल आए, क्या सच में ये जबरदस्ती की शादी का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत हो सकता है, और क्या तुम्हारी तरफ से भी ये रिश्ता ऐसा ही है, या तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है हमारा रिश्ता? उसे कोई जवाब नहीं मिला तो अंबिका वेदांश के बगल में लेट गई। भले ही वेदांश बेहोश था लेकिन फिर भी अंबिका उसके करीब आई और उसने वेदांश की चेस्ट पर धीरे से अपना सर रखा और उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके एकदम नज़दीक लेट गई। अंबिका ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा वेदांश के सीने में छिपा लिया। वेदांश का बुखार भी अब पहले से कम हो गया था। अंबिका को एक अलग सा सुकून मिल रहा था वेदांश की बाहों में, और वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। उससे दूर जाने का ख्याल भी अब अंबिका के मन में नहीं था। टू बी कंटिन्यूड।
क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? और अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइए आज के एपिसोड में क्या था आपका फेवरेट सीन, और कौन है अब तक आपका फेवरेट कैरेक्टर और फेवरेट कपल, बताइए कमेंट में। रोज के एपिसोड में से ही अपना फेवरेट पार्ट या डायलॉग तो ज़रूर बताइए, और स्टोरी में क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और आप लोगों को क्या देखना है ये सब आप लोग कमेंट में लिखा करिए, और स्टोरी को रेटिंग रिव्यू ज़रूर करिए, साथ में हमें फॉलो भी कर लीजिए। ये स्टोरी हम ऐसे ही खामोशी से तो कंटिन्यू नहीं करने वाले, हमें हमेशा की तरह बात करने वाले लोग चाहिए जो स्टोरी में पूरा इंटरेस्ट लें, तभी इस स्टोरी के जल्दी जल्दी ज्यादा और बड़े पार्ट मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि जब कोई भी कमेंट नहीं करता है, सिर्फ पढ़कर चले जाते हैं, तो फिर मेरा भी अगला भाग लिखने का दिल नहीं होता। पचाते हप ऐसे साइलेंट रीडर्स को जिनकी कोई वॉइस नहीं है स्टोरी को लेकर, बहुत बुरा लगता है।